आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्लास 10th के साइंस का 14th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने सोलर सेल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सोलर पैनल लगा करके हम लोग एटलीस्ट 0.5 to 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि 0.7 वाट की इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट हो सकती है अगर एक टिपिकल सोलर सेल यूज किया जाए तो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर चाहिए, पावर इलेक्ट्रिसिटी की पावर ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि हमें बहुत सारे सोलर सेल्स लगाने होंगे, यानी कि एक बड़ा सोलर पैनल लगाना होगा जिससे कि काफी अच्छी अमाउंट की हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती भी मिल जाती है। और काफी सारे जगहों पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के लिए सोलर पैनल यूज किए जाते हैं, रिमोट एरियाज जैसे कि हिली एरियाज, चाहे ऐसी जगह जहां पर हम ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं लगा सकते, हम जो वायर्स हैं बिजली की वायर्स हैं जो हैं वो लगा करके इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई कर सकते, तो ऐसी जगहों पर हम सोलर पैनल लगा करके उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इसको मेंटेनेंस करने के लिए भी बहुत ज्यादा हमें नहीं खर्च करना पड़ता है, थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है तो हमें यहाँ पर इसकी भी दिक्कत नहीं होती है कि क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स है ही नहीं, तो लोग अपने छतों पर लगा सकते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी अपने रूफ टॉप पर लगा सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे टर्बाइन्स रोटेट करने के लिए या फिर विंड मिल्स में रोटेशन होता है, तो ऐसा इस तरीके से का कोई मूविंग पार्ट्स यहाँ पर सोलर पैनल्स में नहीं होता है, तो इनको हम बहुत इजीली छत के ऊपर रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। साल के जितने साल तक जब तक धूप रहती है, इंडिया में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम धूप रहती है, तो साल के काफी समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर सकता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि आप ये देखते हैं कि ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन यूज होता है, हाई क्वालिटी का अगर सिलिकॉन यूज करेंगे तो ये थोड़ा और महंगा हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेल्स जो है, सोलर सेल्स जो है, इनके कनेक्शन के लिए हम लोग सिल्वर यूज करते हैं, तो उसकी वजह से सोलर सेल थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इसके कॉस्ट की अगर बात की जाए तो यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये काफी महंगा होता है, लेकिन बाकी अगर बाकी सारी बातें की जाए तो ये काफी यूजफुल होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में भी इसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सन से जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी जो उसको मिल रही है, उसी का यूज करके वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरा करता है और वो अपना फंक्शन करता रहता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में हम लोग इनको यूज करते हैं, सोलर पैनल्स को यूज करते हैं। साथ ही में रेडियो, जो वायरलेस रेडियो है, या फिर टीवी की रिले स्टेशंस जो है रिमोट एरियाज में, वहां पर भी हम लोग सोलर पैनल्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से सोलर पैनल जो है ये काफी इजी होता है यूज करने के लिए, छत पर आसानी से आप लगा सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते रहेंगे तो साल भर आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्र से किस तरीके से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने अबाउट टाइडल एनर्जी, हमने देखा था कि टाइडल एनर्जी में क्या था, समुद्र की कभी कभी तो लेवल पानी की बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है। जब बढ़ जाती है तो उसे हम हाई टाइड्स कहते हैं, जब घट जाती है तो उसे हम लो टाइड कहते हैं। तो ये जो सी लेवल का डिफरेंस है, इसकी वजह से जब वो हाई टाइड में आता है और फिर जैसे ही उससे गिरेगा तो लो टाइड में आएगा, तो जब वो हाई टाइड में आता है उसके गिरने के पहले ही हम जो हाई टाइड वाला पानी है उसको टर्बाइन के ऊपर गिराते हैं। जैसे वो गिरता है तो वो टर्बाइन पर गिरता है, उससे क्या होता है कि टर्बाइन रोटेट करता है, उसके रोटेट होते ही मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेव एनर्जी, ये भी समुद्र से ही मिलती है, समुद्र की तरंगे, काफी देखा होगा आपने, काफी बड़ी बड़ी तरंगे दिखती हैं कई बारी, तो इन तरंगों का यूज किया जाता है। समुद्र के इलाके में हवा तेज चलती है तो इसी वजह से ये वेव्स क्रिएट होती हैं। अब इन वेव्स में काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं टू रोटेट द टर्बाइन्स। तो ये जैसे ही टर्बाइन पर गिरती है तो ये टर्बाइन को रोटेट करती है, वहां पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, इस मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से वेव एनर्जी का यूज हम कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी में हमने ये देखा था कि ओशियन के सरफेस का ऊपर का जो पानी होता है वो रिलेटिवली गर्म होता है, और अगर हम उसके बहुत नीचे के पानी के बारे में बात करें, बहुत गहराई में जो पानी होता है उसके बारे में बात करें, थोड़ा सा गहरा, अप्रोक्सीमेटली सरफेस से 2 किलोमीटर की डेप्थ पर जो पानी है उसकी अगर बात करें, तो वो टेम्परेचर थोड़ा होता है ठंडा। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस से एनर्जी जो होती है ओशियन में उसका यूज करते हैं हम लोग। तो सरफेस के ऊपर की जो गर्म पानी है उसको यूज करते हैं टू वेपराइज अमोनिया, एक लिक्विड अमोनिया हम लोग लेते हैं सब्सटेंस, और इस लिक्विड अमोनिया को वेपराइज करने के लिए, भाप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो ओशियन का सरफेस का गर्म टेम्परेचर है उसे यूज करते हैं। अब ये जो लिक्विड अमोनिया है ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, उसके बाद इस वेपर को हम टर्बाइन पर फोकस कराते हैं, टर्बाइन पर पड़वाते हैं इस भाप को, भाप से टर्बाइन रोटेट करती है, टर्बाइन के रोटेट होते ही मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, ये मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भाप में कन्वर्ट हो चुका अमोनिया है अगर हम उसे वापस से रीयूज करना चाहते हैं तो हमें उसे वापस से लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा टेम्परेचर यूज करते हैं, जो हमारी ओशन का नीचे का लेवल का पानी है वो ठंडा है, तो उसी ठंडे टेम्परेचर को यूज करके हम लोग अमोनिया को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम वापस से भाप में कन्वर्ट करके वापस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ओशियन की जो थर्मल एनर्जी है उसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों को 20 डिग्री सेल्सियस का या फिर 20 केल्विन का भी टेम्परेचर मिल जाए तो आप लोग काफी अच्छा अमाउंट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेट करा सकते हैं फ्रॉम ओशियन थर्मल एनर्जी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में आपने ये पढ़ा था कि धरती के क्रस्ट के नीचे जो जितना भी डीपर एरिया है वहां पर मॉल्टन रॉक्स होते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं। अब ये जो गर्म मॉल्टन रॉक्स हैं ये क्या करते हैं, धरती में मूवमेंट की वजह से ये धीरे धीरे करके क्रस्ट वाले ऊपर वाला जो सरफेस है वहां तक पहुंचने लगते हैं। तो क्रस्ट के ऊपर वाले हिस्से में जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर ये जो रीजन्स क्रिएट करते हैं उनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। अब ये जो हॉट स्पॉट्स है वहां पर क्या है, बेसिकली गर्म मॉल्टन इग्नियस रॉक्स है, कोई से भी रॉक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इग्नियस रॉक्स है, वहां पर बेसिकली मॉल्टन रॉक्स है। तो ये हॉट स्पॉट्स जो है यहाँ पर मॉल्टन रॉक्स है जो बहुत गर्म है, इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसके कॉन्टेक्ट में जो पानी आता है, जो हमारे सरफेस के नीचे का पानी है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर जब हॉट स्पॉट्स के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पर वो ग्राउंड वाटर बहुत गर्म हो जाता है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है, वहां पर स्टीम की फॉर्मेशन दिखती है। और इन जगहों पर जहां पर आपको इस तरीके से स्टीम्स की फॉर्मेशन दिख रही है पानी में से, उन्हें हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। ये जो हॉट स्प्रिंग्स से भाप निकल रहा है इसको हम लोग टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज कर लेते हैं, और टर्बाइन के रोटेट होते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसे कन्वर्ट करा लेते हैं। तो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आज जो हमें पढ़ना था वो हमें पढ़ना था अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी यूजफुल भी बहुत होती है और ये डिस्ट्रक्टिव भी बहुत हो सकती है। ये हमारे कंट्रोल से बाहर अगर हो गई तो ये ह्यूमैनिटी को बहुत हाई स्केल पर नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर सब्सटेंसेस को यूज करके जो न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट की जाती है, जनरेट की जाती है, वो बहुत ही हाई अमाउंट की होती है। यहाँ पर जो हम लोग न्यूक्लियर जो फ्यूल जो यूज करते हैं बेसिकली वो क्या क्या यूज करते हैं, केमिकल्स हैं, यूरेनियम यूज कर सकते हैं या फिर प्लूटोनियम यूज कर सकते हैं या फिर थोरियम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सभी के सभी नहीं यूज कर सकते हैं एटम्स। यूरेनियम का एक स्पेसिफिक एटम होता है, कुछ एटॉमिक मास होता है उसका, सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली प्लूटोनियम और थोरियम भी, तो हैवी एटम्स जो ये हैं हमारे यूरेनियम प्लूटोनियम और थोरियम, इनको हम यूज करते हैं। इन हैवी एटम्स को हम बॉम्बार्ड कराते हैं, इसका मतलब है कि इनकी हम टक्कर करवाते हैं विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के साथ में टक्कर कराते हैं, हम हैवी एटम्स की टक्कर कराते हैं विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। ये टक्कर जब होती है तो इससे क्या होता है कि हैवी एटम्स जो हैं ये कम एटॉमिक मास के एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लाइटर एटम्स का क्रिएशन होता है। अब जैसे ही लाइटर एटम्स का क्रिएशन होता है तो इसी के साथ में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, बहुत हाई एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, रिलीज होती है जैसे ही ये रिएक्शन होता है। आपने क्या किया, आपने हैवी एटम्स लिए जैसे कि यूरेनियम प्लूटोनियम और थोरियम, और इनकी बॉम्बार्डमेंट कराई, इनको आपने भिड़वाया किसके साथ, न्यूट्रॉन्स के साथ, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ। इसके बॉम्बार्डमेंट के साथ ही हमारा जो हैवी एटम है वो लाइटर एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिनके एटॉमिक मास थोड़े कम होते हैं। तो जैसे ही ये कन्वर्जन होता है तो वहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और यही एनर्जी जो है ये इसी के बारे में बात की जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। जो ये एनर्जी रिलीज होती है ये इतनी हाई होती है कि आप कह सकते हैं कि कोयला जलाने से आप लोगों को जो एनर्जी मिल रही है उसके अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन टाइम्स हायर ये एनर्जी जनरेट होती है, सिर्फ आप एटम्स का यूज करके ही इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हैवी एटम्स जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम और थोरियम, इनके बॉम्बार्डमेंट कराने से न्यूट्रॉन्स के साथ में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कोयले को जलाने से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर बेसिकली एनर्जी जनरेट क्यों होती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जहां पर भी मास में डिफरेंस आ जाता है, जब सबसे पहले आपने हैवी एटम्स लिए थे उनका कुछ मास होगा, उससे जो आप लोगों को जो हल्के एटम्स मिले हैं बाद में बॉम्बार्डमेंट के बाद में, इनका जो कंबाइंड मास होता है वो पहले वाले हैवी एटम के मास से थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर मास में जो डिफरेंस मिलता है तो इसी की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर आपने जो ये यूरेनियम यूज किया है, प्लूटोनियम यूज किया है या थोरियम यूज किया है, इसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करके हम एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं ये इससे हम एक चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन कराते हैं। जैसे ही यहाँ पर आपने जो हल्के एटम्स का क्रिएशन किया तो यहाँ पर एनर्जी जो लिबरेट हुई, इस एनर्जी का यूज करके फिर से बॉम्बार्डमेंट करा सकते हैं आप यूरेनियम का, प्लूटोनियम का और थोरियम का विथ न्यूट्रॉन्स, और फिर से और एनर्जी जनरेट होगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली एनर्जी जनरेट कर सकते हैं आप लोग। और ये जो एनर्जी जनरेट हो सकती है अगर आप इसे कंट्रोल्ड स्केल पे रखें, एक अपने कंट्रोल में अगर आप रख पा रहे हैं, तो इस एनर्जी का यूज करके आप लोग स्टीम का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इस क्योंकि एनर्जी जो जनरेट हुई है ये इससे आप स्टीम को, पानी को गर्म कर सकते हैं, उससे स्टीम का फॉर्मेशन होगा, स्टीम को टर्बाइन पर डालेंगे तो टर्बाइन का रोटेशन होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी जनरेट हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो आप स्टीम भी बहुत ज्यादा फॉर्मेशन करा सकते हैं। स्टीम का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो टर्बाइन ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा रोटेट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं अगर वो आपके कंट्रोल में रहता है तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मास में डिफरेंस होने से एनर्जी कैसे जनरेट होती है। तो सबसे पहले जो बताया था इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया था, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके बारे में आप लोग, नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार बताया था कि अगर मास में डिफरेंस आता है बिटवीन ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियस, तो जो भी मास में डिफरेंस आया है वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो बहुत फेमस थी, इनकी मास एनर्जी इक्वेशन, नाम इन्होंने रखा था मास एनर्जी इक्वेशन। इन्होंने फॉर्मूला दिया था एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट होल स्क्वायर, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। पेज नंबर 251 पर आप देख सकते हो जो ऑरेंज बॉक्स दिखाया है, इसमें आपको इक्वेशन लिख करके दी गई है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। E क्या है? E है एनर्जी, डेल्टा एम है मास का डिफरेंस, फाइनल मास और इनिशियल मास में जो अंतर आ रहा है वो डिफरेंस, सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है तो मास का डिफरेंस पता लगाओ, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है हमेशा कॉन्स्टेंट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे मास इंटू सी स्क्वायर तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी आप देखोगे, आप अगर कैलकुलेशन करो तो थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आप देखो, मान लो कुछ भी आप मास का वहां पर डाल दो वैल्यू, तो आप देखते हो कि जो एनर्जी आपको मिलती है वो कम से कम आपको 391 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्केल पे मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली जनरेट होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे मान लें कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में हमने मूव कराया है, तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.602×10⁻¹⁹ जूल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराओगे तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर मास एनर्जी इक्वेशन को यूज करके आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि अगर आप एक एटॉमिक मास का कोई भी एटम लेते हैं, एक एटॉमिक मास का कौन सा एटम होगा, हाइड्रोजन होगा। मान लो आपने एक एटॉमिक मास का एक एटम लिया है हाइड्रोजन का, और आपने इससे एनर्जी जनरेट कराई है, तो इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी। तो आप देख सकते हैं मेगा मतलब 10⁶, तो इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक एटॉमिक मास के सब्सटेंस से जनरेट करा सकते हैं। तो अगर आप हैवी एटम्स यूज करते हैं तो उससे तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। कई बार क्या होता है कि ये एनर्जी जो है ये कंट्रोल में नहीं रह पाती है। हमारे देश में भी कई कई जगहों पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं आप लोगों को यहाँ पर पेज नंबर 252 पर बताया गया है। तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कालापक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, काकरापुर गुजरात में है और कैगा कर्नाटका में है। तो ये अलग अलग जगह है हमारे देश में जहां पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जहां पर हम भी न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज करके एनर्जी जनरेट कराते हैं। हमारे देश में, भारत में जो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाए गए हैं, ये इतने हाई स्केल के नहीं बनाए गए हैं और इससे जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 3% है। हमारे पूरे देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी जनरेट होकर के आती है, उसका सिर्फ 3% हिस्सा हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मदद से मिलता है। लेकिन दूसरी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके यहाँ 3% नहीं, उनका एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 30% हिस्सा न्यूक्लियर रिएक्टर्स से मिलता है। लेकिन हमने हमारे देश में ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर फोकस अभी नहीं किया है। दूसरे देशों में, कई जगहों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया हो गया या फिर अमेरिका हो गया, तो इनके यहाँ भी काफी ज्यादा ये लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इनके यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं ये यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर आपने देखा कि कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जनरेट कर सकता है। थोड़ा सा ही आप एटम्स यूज कर रहे हैं यूरेनियम थोरियम और प्लूटोनियम का, तो उसी से आप बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। हम सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं कर सकते कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट करके देता है। जब ये एनर्जी जनरेट इसने कर लिया, उसके बाद जो भी हमारे पास वेस्ट क्रिएट होते हैं वो भी केमिकल्स हैं, क्योंकि हमने केमिकल का यूज करके एनर्जी जनरेट कराया है। तो वहां पर एनर्जी जनरेट होने के बाद में, प्रोसेस के खत्म होने के बाद में जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी केमिकल्स हैं। तो इन केमिकल्स को हम किस तरीके से इनको डील करें, इनको, इस वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, वेस्ट मैनेजमेंट जो हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जितना भी हमारे पास वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको क्या करते हैं कि पहाड़, जितने भी पहाड़ होते हैं उसके काफी अंदर 500-600 किलोमीटर के नीचे एकदम धरती के अंदर बॉक्स कंटेनर्स बनाते हैं, ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं जिनसे कि बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं निकल पाए। तो और उसके अंदर जो भी वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट जो है, वो सारा का सारा उस बॉक्स में डाल देते हैं और उसके बाद उस बॉक्स को बहुत नीचे पहाड़ों के एकदम डीप डाल देते हैं। लेकिन इससे भी आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि कभी वो एक्सप्लोड कर जाए, किसी कारणवश वो बॉक्स जिसके अंदर आपने वेस्ट डाला हुआ है वो एक्सप्लोड कर जाए। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी आसपास की जगह है वो सारी की सारी न्यूक्लियर एनर्जी से बिल्कुल डिवास्टेटेड हो जाएंगी, वो सारी की सारी एरियाज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपने अभी अभी देखा कि कितनी हाई अमाउंट की एनर्जी जो है ये जनरेट करता है। साथ में क्योंकि ये केमिकल्स है तो वहां की जितनी भी लाइफ है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर भी बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये तरीका जो हम लोग बरी कर देते हैं, जमीन के अंदर एकदम गाड़ देते हैं, तो इससे भी तो ये भी तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस पर भी काफी लोग बहस कर रहे हैं और बहुत लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं, बहुत लोग मना कर रहे हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोग अगर धरती के अंदर आपने वो बॉक्स जिसके अंदर आपने वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट रखा हुआ है, हो सकता है उससे लीकेज हो जाए। अगर वो मान लो ब्लास्ट नहीं किया तो हो सकता है उससे एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, उससे जो लीकेज होगा उससे भी आसपास की जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी फैंटेसीज हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं नेगेटिव, ऐसा हुआ है इसलिए लोग सोच रहे हैं। रशिया में ऐसा हुआ था, रशिया में इन लोगों ने, जो वहां की कंट्रीज के लोग हैं, उन लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर से जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ उसको उन्होंने बॉक्स में डाला और पहाड़ के नीचे बहुत डीपली इन्होंने ये बॉक्स रख दिया। वहां पर क्या हुआ कि लोगों को पता भी नहीं चला, धीरे धीरे करके उस बॉक्स में से लीकेज शुरू हो गई और जो भी न्यूक्लियर वेस्ट था वो आसपास के लोगों को एकदम धीरे धीरे करके नुकसान करता चला गया। रशिया ने ये बात छिपाई और वहां के जितने लोगों की मृत्यु हुई थी उनको बिना किसी को बताए, ऐसे लोग जिनको, जो न्यूक्लियर रिएक्शन से उनकी डेथ हुई है, उनको फिर उन्होंने डिस्पोज भी किया और किसी को कुछ बताया नहीं गया, पूरी कंट्रीज को, जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है उनसे छिपाया गया। लेकिन फिर भी जब पता चला तो ये भी मालूम हुआ कि बहुत हाई लेवल पर वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो हमारे जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसको यूज करके हम एनर्जी तो जनरेट करते हैं लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। इनसे जो रेडिएशंस क्रिएट होती हैं उससे काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं, म्यूटेशंस होती हैं जिससे बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, स्पेशली कैंसर। तो रेडिएशंस जो निकलती हैं हमारे न्यूक्लियर वेस्ट से या फिर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे म्यूटेशन हो सकती है, कैंसर की बीमारी बढ़ सकती है। तो इसीलिए काफी कंट्रीज जो है वो सिर्फ ये नहीं देखती कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करके देती है, वो ये भी देखते हैं कि इससे नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि जो रेडिएशंस क्रिएट हो रही है उससे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, साथ में इसके वेस्ट को किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए इसमें भी बहुत नुकसान है, उसके साथ में हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो उससे बहुत पैसा लगता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रिएक्शंस करवाने में बहुत पैसा लगता है, और जैसे कि ये जो ये हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं ये बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि हर एक कंट्री खरीदना चाहती है, स्पेशली वो कंट्रीज जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बहुत ज्यादा वहां पर क्रेज है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री हो गई, तो इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा इन लोगों ने इनके यहाँ यूरेनियम स्टोर करके रखा हुआ है ताकि न्यूक्लियर वेपन्स ये बना सकें इन केस अगर वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो इसके लिए ये लोग यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है आप लोगों को पता है इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बहुत सालों पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 चल रहे थे तो उस वक्त हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब्स गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे जिससे कि लोगों की बहुत हाई स्केल पे मृत्यु हुई थी, लोगों की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी क्रिएट होती है काफी लोग तो इसको पॉजिटिव रूप में अपने देश की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पूर्ति के लिए यूज करते हैं और काफी लोग इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि एनर्जी तो दोनों ही केसेस में जनरेट होगी, बस एक केस में आप पॉजिटिव यूज में यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव रूप में यूज कर रहे हैं, दूसरे केस में आप डिस्ट्रक्शन कराने के लिए यूज कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो यूजफुल भी हैं और इनके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर आपने जो न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी जनरेशन पढ़ी उसमें आपने बेसिकली क्या पढ़ा, हैवी न्यूक्लियस जो थे, हैवी एटम्स जो थे उनको ब्रेक किया गया इनटू लाइटर एटम्स, हल्के एटम्स में बनाया गया, हैवी एटम्स को तोड़ करके उनको बेसिकली ब्रेक किया गया इनटू लाइटर एटम्स। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम फिशन कहते हैं, फिशन माने ब्रेक होना, यहाँ पर हैवी एटम्स को ब्रेक किया गया इनटू स्मॉलर एटम्स, तो इस रिएक्शन को फिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास दूसरे रिएक्शन भी है जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन ही कराते हैं, वहां पर फ्यूजन कराते हैं, तो वहां पर हम क्या कराते हैं, हम दो एटम्स को लेकर के फिर एक कॉम्बिनेशन कराते हैं, उन दोनों एटम्स का कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो वहां पर जो बाद में मास बनेगा वो हायर होगा। फिशन में क्या होता है, फिशन में बड़ा मास को तोड़ करके छोटे मास में कन्वर्ट करते हैं, और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में छोटे मासेस को यूज करके बड़े मास में कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, फ्यूजन और फिशन दोनों के दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन है। फ्यूजन जो होता है ये हम लोग देखते हैं सन में होता है फ्यूजन रिएक्शन, तो सन की जो सोलर एनर्जी होती है बेसिकली आपको पता है वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो वहां पर फ्यूजन और फिशन दोनों ही रिएक्शंस होते हैं, ज्यादातर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन का ये फायदा है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली एक सेफर प्रोसेस है और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में इसीलिए यहाँ पर हमें पढ़ना है। न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हम कौन से एटम्स यूज करते हैं, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स हम यूज करते हैं। हाइड्रोजन तो आपको पता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, उसका आइसोटोप है एक जिसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका एटॉमिक मास 2 होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ पर ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं, तो ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटोन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और एक नॉर्मल अगर हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए जिसका एटॉमिक मास 1 है तो उसके पास केवल एक ही न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ये एक आइसोटोप है, तो हमने ड्यूटेरियम यूज किया। और ड्यूटेरियम दो एटम्स मान लो हमने यूज किए, इनका फ्यूजन कराएंगे तो हमें हीलियम का एक न्यूक्लियाई मिलेगा, साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा। तो ये जो रिएक्शन है जो आप लोगों को यहाँ पर पेज नंबर 252 पर दिखाई गई है ऑरेंज कलर के बॉक्स में, 2H प्लस 2H और फॉर्मेशन हुआ है 3HE प्लस 1 स्मॉल n, स्मॉल n जो है ये न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल n से, और 3HE ये जो है ये हमें हीलियम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, दो न्यूट्रॉन्स बनते हैं 1N प्लस 1N, और हीलियम आप लोगों को 2HE से दिखाना चाहिए था, और यहाँ पर 2H और 2H जो यूज किए हैं ये ड्यूटेरियम्स है, और इस तरीके की रिएक्शन जो है ये फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है। फ्यूजन रिएक्शन में भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। फिशन रिएक्शन में भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है लेकिन वो ज्यादा नुकसानदायक होता है, ये थोड़ा सा सेफर प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें भी आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करें तो हम लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज होती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास में डिफरेंस आना चाहिए, जो फॉर्मेशन हुआ है हीलियम का, हीलियम का मास जो होता है ये थोड़ा सा कम होता है अगर हम ड्यूटेरियम, दोनों ड्यूटेरियम एटम्स के मासेस को ऐड करें और उसको फिर उस मास से हम जो हीलियम बना है उसके मास को सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग को मास मिल जाता है। यानी कि हीलियम का मास जो है वो दोनों ड्यूटेरियम के कंबाइंड मास से कम है, तो इसकी वजह से अगर मास में डिफरेंस आ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है E=mc², इसके अकॉर्डिंग बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन से भी मिलती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम कैसे करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए हम पहले एक हाइड्रोजन बॉम्ब लेते हैं। बॉम्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको बॉम्ब कहा जाता है। बेसिकली हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं और यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कराते हैं। ये जो कंटेनर आपने लिया हुआ है जिसे आप हाइड्रोजन बॉम्ब कह रहे हैं, इसके अंदर आप एक और कंटेनर रखते हैं और उस कंटेनर के अंदर जो बड़ा आपने एक हाइड्रोजन बॉम्ब कंटेनर लिया उसके अंदर आपने एक और कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर के अंदर फिशन रिएक्शन चल रही है। उसके अंदर आपने यूरेनियम डाला हुआ है, प्लूटोनियम डाला हुआ है और उसके अंदर आपने क्या करा है, उसके अंदर आपने फिशन रिएक्शन करवा रखा है। अब फिशन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी। जो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर आपने दूसरा एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर फिशन रिएक्शन हो रही है उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी और ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। ये हाई टेम्परेचर की आवश्यकता हम लोगों को है ताकि फ्यूजन रिएक्शन हम कराएं। आप लोगों को दो न्यूक्लियाई फ्यूज कराने हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी हम फिशन के रिएक्शन से, जो हम हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर एक और कंटेनर रखा हुआ है उसके अंदर फिशन रिएक्शन चल रही है, वहां से जो एनर्जी हम लोग को मिल रही है उसको हम यूज करते हैं टू फ्यूज दी ड्यूटेरियम एटम्स। तो ड्यूटेरियम के एटम्स को फ्यूज कराने के लिए हम लोग फिशन रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी एक और कंटेनर को रख के। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर एक और कंटेनर रखा गया है क्योंकि इसके अंदर फिशन रिएक्शन चल रही है जो कि हाईली एनर्जेटिक होती है, तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो ये कंटेनर है जिसके अंदर फिशन रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर का टेम्परेचर राइज हो जाता है 2×10⁻⁷ केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर का ये जो बॉक्स है ये एनर्जी जनरेट करता है। तो इसी हाई टेम्परेचर से सफिशियंट एनर्जी निकलती है ताकि हम लाइटर न्यूक्लियस को फ्यूज करा करके बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्रिएट करा पाए। और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में ड्यूटेरियम और लिथियम डाला हुआ रहता है ताकि वहां पर ड्यूटेरियम के बीच में रिएक्शन होए और वहां पर हीलियम का फॉर्मेशन हो और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो और यहाँ पर ये जो फ्यूजन रिएक्शन होगा फिर इससे बहुत डिवास्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये जो लाइन लिखी है पेज नंबर 252 पर ऑरेंज बॉक्स में लास्ट लाइन जो है यहाँ पर आपको लिखा है डिवास्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। डिवास्टेटिंग मतलब ये तहस नहस कर सकती है, अगर किसी तरीके से ये एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो गई तो ये चीजों को बर्बाद कर सकती है, तो इसीलिए आपसे बोला गया क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो फ्यूजन रिएक्शंस है ये सन में और दूसरे स्टार्स में भी होती है, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि सन की इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है क्योंकि वहां पर फ्यूजन रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब ये जो फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है इसी वजह से इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इसी से सन जो है इतने सालों से अभी तक जिंदा है और आगे भी कई सालों तक जिंदा रहेगा क्योंकि उसके पास इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उसे अभी भी उसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो सन और दूसरे स्टार्स के जो एनवायरमेंट है वहां पर जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं कि न्यूक्लियस जो है छोटे न्यूक्लियसेस जो है लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करते हैं आपस में और उनके फ्यूजन से फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पर आप लोगों को कंडीशंस बताई गई हैं किस तरीके की कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मिलियन ऑफ डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए होता है, 1,000,000 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ होता है, तो बहुत हाई डिग्री का टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, साथ में मिलियंस ऑफ पास्कल्स प्रेशर भी चाहिए होता है आपको, तो इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर भी आपको चाहिए और टेम्परेचर भी आपको ज्यादा चाहिए तब जाकर के आप फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हैं। सन और स्टार पर इस तरीके की कंडीशन मिल जाती है इसलिए वहां पर फ्यूजन रिएक्शन होती है और वहां बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है और वही एनर्जी धरती को भी मिलती है ताकि फोटोसिंथेसिस वगैरह हो हमारी धरती पर प्लांट्स में। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो टॉपिक है इसके बारे में आप लोगों को आज जो आपने पढ़ा है वो आप लोगों को रिवाइज कर लेना है और कोई इसमें दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल कंसीक्वेंसेस और उसके बाद हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, ये सारा देख करके उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो भी डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो एक लास्ट क्लास और रिक्वायर्ड होगी, फिर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स हो तो आप अपने टीचर्स से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।